Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesam Rajata Girinibham Charuchandravatansam Ratnakalpojvalangam Parasamrigavara Vitihastam Prasannam Padmasinam Samantat Stutamamaragalir Vyagrakritim Vasanam Visvadhyam Visvavandhyam Nikhilabhayaharam Panchavaktram Trinetram Narayanam Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatat Putra Parasarancha Vyasam Sukam Gauda Padam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Sishyam Shri Sankaracharya Mathasya Padma Padancha Hastamalakancha Sishyam Tantotakam Vartikakaramanyan Asmat Gurum Santatamanatosmi Visuddha Jnana Dehaya Trivedi Divya Chakshuse Shreyah Prapti Nimittaya Namaha Somartha Dharine Om Shantihi 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 Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Shivaya Nama Om Namah Shivaya Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om
Shivaya Nama Om Namah Shivaya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om
Haraya Nama Om
Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya
Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om
Namo Haraya Haraya Nama Om Haraya Nama Om Haraya Nama Om Namo Haraya Haraya Nama Om
Haraya Nama Om
Haraya Nama Om Namo Haraya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Bhavaya Nama Om Namo Bhavaya बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय बाबाय नमः ॐ
बाबाय नमः ॐ
बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः
मृडाय नमः
मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः
मृडाय नमः
मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय
शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ
शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम्
भज मन शिव शिव निरन्तरम्
जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम्
रट मन शिव शिव निरन्तरम्
स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ कृष्णयजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद अंतर्गत श्वेतासुतर उपनिषद के प्रसंग में चतुर्थाध्याय के ग्यारहवां मंत्र है। यो योनिम् योनिमदितिष्ठत्येको
यो योनिम् योनिम् अदितिष्ठत्येको
यस्मिन्निदं स च वीचैति सर्वम्
यस्मिन्निदं स च वीचैति सर्वम्
तमीशानम् वरदम् देवमिड्यम्
तमीशानम् वरदम् देवमिड्यम्
निचाय्य माम् शान्तिमत्यन्तमेति
निचाय्य माम् शान्तिमत्यन्तमेति
यो देवानाम् प्रभवश्चोद्भवश्च
यो देवानाम् प्रभवश्चोद्भवश्च
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि
हिरण्यगर्भम् पश्यतः जायमानम्
हिरण्यगर्भम् पश्यत जायमानम्
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु
स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु
यो देवानामधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिताः
या
ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः
या ईशे य यस्य द्विपच्चतुष्पदः
कस्मै देवाय हविषा विधेम
कस्मै देवाय हविषा विधेम
सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् कलिलस्य मध्ये
सूक्ष्मातिसूक्ष्मम् कलिलस्य मध्ये
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्
विश्वश्चैकम् विश्वस्यैकम् परिवेष्टितारम्
विश्वैकम् परिवेष्टितारम्
ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति
ज्ञात्वा शिवम् शान्तिमत्यन्तमेति
स एव काले भुवनस्य गोप्ता
स एव काले भुवनस्य गोप्ता
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः
विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च
यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनत्
तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाश्चिनन्ति।
तो बता रहे थे कि वो मायाधिपति माया के संपर्क से सारे विश्व को उत्पन्न करता है और ये विश्व क्या है तो उसी का एक अवयव मात्र है, उसी से ये सारा विश्व व्याप्त है, भरा हुआ है। उसी बात को ये मंत्र 11वें मंत्र द्वारा और पुष्ट करते हैं। यो योनिम योनिम अधितिष्ठति एक, जो एक है और समस्त जगत कारण का भी वह कारण अधिष्ठान है, यस्मिन् इदं स च विचयति सर्वम्, जिसमें जिस अधिष्ठान में इदम् इदन्तेन प्रतीयमान, विचयति सर्वम् विशेष रूप में प्रतिष्ठित भी है और पश्चात ये सब उसी में लय भी हो जाता है। तम ईशानम, उस शासनकर्ता व नियमनकर्ता, ईशान शासनकर्ता नियमनकर्ता संचालक वरगम, संसार के जीव जो भी हैं वह जैसा चाहते हैं वैसा उनको देने वाला वरदम, सामान्य अर्थ वरदान देने वाला। देवम ईड्यम, वो पूजनीय है ऐसा जो देवता, ऐसे परमात्मा को निचाइये माम, शांतिम अत्यंतम इति, ऐसे जानने वाला व्यक्ति ही संसार में वह शांति को प्राप्त करता है, बाकी अशांत ही रहते हैं। जानने वाला शांति को प्राप्त करता है, न जानने वाला अशांत ही रहता है। यह इस मंत्र का सामान्य अर्थ है। इन मंत्रों के द्वारा यही निश्चय है कि अधिष्ठान जो है, आधार जो है, वह अनेक नहीं हो सकते। आधे अनेक हो सकते हैं, आधार अनेक नहीं हो सकते। अध्यस्त अनेक हो सकते हैं, अधिष्ठान अनेक नहीं हो सकते। जिस अधिष्ठान में तुम्हारा मित्र रह रहा है उसी अधिष्ठान में तुम्हारा शत्रु भी रहता है। जिस अधिष्ठान में तुम्हारे समस्त कार्य कारण रहते हैं उसी में कार्य रहता है, जिसमें कार्य है उसी में कारण है। इसलिए अधिष्ठान एक है, प्रकाशक एक है, यस्मिन्निदं स च विचैति सर्वम्। सामान्य लौकिक दृष्टि से यदि विचार किया जाए हम मरकर जहां जाएंगे हमारा शत्रु मरकर वहीं जाएगा। देख लो आपने कभी कल्पना की है, हम मरकर जहां जाएंगे हमारा शत्रु भी मरकर वहीं जाएगा। तो तुम कहोगे कि फिर तो शत्रुता से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, मरने के बाद भी शत्रुता से छुटकारा नहीं मिल सकता है। मैं किस आशय से कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि तुम भी पूजा करते हो तुम्हारा शत्रु भी पूजा करता है, तुम भी माला जपते हो तुम्हारा शत्रु भी माला जपता है, तुम भी मंदिर जाते हो तुम्हारा शत्रु भी मंदिर जाता है, और तुम भी भगवान को मानते हो तुम्हारा शत्रु भी भगवान को मानता है, और तुम भी भगवान को मानते हो तुम्हारा शत्रु भी भगवान को मानता है। भगवान को मानने के कारण तुम यदि अच्छे लोक में जाओगे तो भगवान को ही मानने के कारण वो अच्छे लोक क्यों नहीं जाएगा? बोलो, जाएगा कि नहीं है? नहीं जाएगा वो अच्छे लोग? तुम्हारे साथ शत्रुता हुई इसका मतलब उसको भगवान के धाम में रास्ता बंद नहीं होगा, उसने तो भगवान से मित्रता बना ही रखा है ना। और यदि वह तुम्हारा शत्रु भगवान के धाम नहीं जाएगा तो ये समझ लो कि तुम भी नहीं जाओगे। ये निश्चित गुरा, ये निश्चित बात है भाई, है इसमें कोई भी शंका नहीं करना। तब क्या हुआ, मरने के बाद भी शत्रुता बनी रहे चाहते हो कि मरने के बाद भी शत्रुता खत्म हो चाहते हो? और मरने के बाद शत्रुता खत्म हो चाहते हो तो वो तभी संभव होगा, तुम्हारे मरने से पहले शत्रुता खत्म होगी। मरने से पहले यदि शत्रुता खत्म होगी तो मरने के बाद भी शत्रुता खत्म होगी, और मरने से पहले शत्रुता खत्म नहीं होगी तो मरने के बाद भी शत्रुता खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसका कारण तो हमने बता दिया। या फिर तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा वह भगवान को नहीं मानता है, वह भगवान की पूजा नहीं करता, वह भगवान के मंदिर नहीं जाता, या भगवान को अपना प्रेमी नहीं मानता, भगवान को अपने अंतरात्मा नहीं मानता, वो पूरा का पूरा नास्तिक। तुम्हारे से दुश्मनी करते ही वो नास्तिक कोटि में तो नहीं जाएगा ना? जाएगा। मेरे से किसी व्यक्ति का दुश्मनी हो गया इतनी मात्र से उसको नास्तिक कोटि में ले जाकर रख सकते हैं? मैं जिस वेद को मानता हूं उस वेद को वो मानता है कि नहीं, पहले तो ये निश्चय कर लो। तो मैं उसी वेद को मानने के कारण मैं आस्तिक हो गया, तो वो भी तो आस्तिक हो गया कि नहीं, उस वेद को मान रहा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, मैं जिस देवता को मानता हूं, परम सत्ता को मानता हूं, उसी सत्ता को मानता है कि नहीं? और यदि उस सत्ता को मानने के कारण मैं अच्छा हूं तो इसका मतलब उस सत्ता को मानने के कारण वो भी तो अच्छा है कि नहीं, मुझे बताइए। जिस कर्म को करके मैं अच्छा हुआ हूं उसी कर्म को करके वो भी तो अच्छा हुआ है, ये बात अलग है। वो व्यक्ति मैं जब मांगता हूं तो मुझे नहीं देता है इसलिए वो कंजूस हो गया। उदाहरण के रूप में मैं आपको कह दूं, एक मेरे पास पैसा है, खूब संपत्ति है, मैं प्रेमपुरी आश्रम को देता हूं, ठीक है कि नहीं? तुम्हारे पास पैसा है, तुम प्रेमपुरी आश्रम को देते हो, दोनों ही सराह हो गए कि नहीं? तुम भी प्रेमपुरी आश्रम को दान करते हो, मैं भी प्रेमपुरी आश्रम को दान करता हूं, तो दोनों ही प्रेमपुरी आश्रम की दृष्टि से दानदाता हो गए, और प्रेमपुरी आश्रम को देने के कारण वह महान हो गया, तो प्रेमपुरी आश्रम को देने के कारण हम भी महान हो गए। प्रेमपुरी आश्रम में दोनों को महान अभिमान बहुत मान कर दिया, बहुमान कर दिया। अब तुम उसको मुझसे, मैं प्रेमपुरी को देता हूं, तुम भी प्रेमपुरी को, तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको नहीं दिया, तो तुमने मांगा और मैंने नहीं दिया तुम्हें, या मैंने तुमसे मांगा और तुमने मुझे नहीं दिया, तो तुम मुझे क्या कहोगे? कंजूस है, कहोगे कि नहीं? और मैंने तुमसे मांगा और तुमने मुझे नहीं दिया, तो मैं क्या कहूंगा तुमसे? कंजूस है। और प्रेमपुरी क्या कहेगा? मुझे दाता है। प्रेमपुरी क्या कहेगा तुम्हें? दाता है। तो प्रेमपुरी का कहा हुआ सही है कि मेरा कहा हुआ सही है? बोलो। तुमने मुझे कंजूस कह दिया, प्रेमपुरी ने दाता कहा। मैंने तुम्हें कंजूस कह दिया, प्रेमपुरी ने तुम्हें भी दाता कहा। तो ये बात जब विचार करते हैं तो ये कंजूस और दाता, ये सारी के सारे भाव व्यक्ति सापेक्ष है। एक व्यक्ति का शत्रु होने मात्र से उसका अहित होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति की दृष्टि से कंजूस होने मात्र से वो कंजूस नहीं होगा, वो सारे जगत का मालिक को दे रहा है तो वो तो सबसे बड़ा दाता होता है। तुम्हें भले ही ना दिया हो, सबसे बड़ा मालिक को दे रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा? तो ये बात व्यवहार में भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत व्यवहार चलाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हम कह रहे थे कि यस्मिन् निदम् सच विचैति सर्वम्, जिस अधिष्ठान में ये सब कुछ अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित है, और जिसमें ये सब लय होते हैं। अब ये सब शत्रु मित्रता सब उपाधियों के चलते हैं, अच्छा और खराब ये सब उपाधियों के चलते हैं, अच्छा खराब ये भावना दोष है, क्योंकि जब परमात्मा में लय होता है तो वह उपाधि भी नहीं रहता। जब उस परमात्मा में लय होता है तो वह भावना दोष भी नहीं रहता। जब उपाधि और भावना दोष नहीं रहता है तो वहां आप और वह दोनों एक होकर रहते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं रहती है। महाप्रलय में आपको और आपके शत्रु को एक साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस उपाधि में भावना दोष विद्यमान है, उस उपाधि का बाध हो जाता है तो उस उपाधि की उपस्थिति नहीं होती है, तब वहां शत्रु मित्रता का भाव ही नहीं है, शत्रु और मित्रता का भाव नहीं, तब फिर वहां कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वहां आप सामान्य रूप में रहते हैं और यहां आप विशेष रूप में रहते हैं। यहां उपाधि के द्वारा रहते हैं, यहां भावनाओं के द्वारा रहते हैं, तब भावना आपकी अलग है, आपकी उपाधि अलग है, उसकी भावना अलग है, उसकी उपाधि अलग है, इसके चलते इस व्यवहार में ये सारे के शत्रु मित्रता आदि भाव सृजना होते हैं, रहते हैं, प्रतीत होता है, तब आपको व्यवहार में कठिनाई ये आ सकती है, परंतु वहां पर कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। यो योनिम योनिम अधितिष्ठत्ते को यस्मिन् निदम् स च विचैति सर्वम् तम् ईशानम्। दूसरी बात है, देखो परमात्मा जब शासन करता है, व्यवस्था करता है, संचालन करता है, तो तुम्हें जितना अनुशासित करता है वह परमात्मा, उतना ही तुम्हारे शत्रु को भी अनुशासित करता है। जितना तुम्हारे शत्रु को अनुशासन करता है, उतने तुम्हें भी अनुशासित करता है। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा केवल तुम्हें अनुशासित कर रहा है, उसको अनुशासित नहीं करता, या केवल उसको अनुशासित करता है तुम्हें अनुशासन नहीं करता, ऐसा नहीं। उसकी व्यवस्था समान है, क्योंकि उसकी सारी व्यवस्था समष्टिगत है। परमात्मा की जो कुछ भी व्यवस्था है वह सब समष्टिगत व्यवस्था है, और उस समष्टि व्यवस्था को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बनाता है। तब जहां अनुकूल हो गया उस समष्टि व्यवस्था को, उसने अपनी व्यक्ति अनुकूल बना ली, तब फिर वह सुखी हुआ। वह समष्टि व्यवस्था को अपने प्रतिकूल मान लिया, तब फिर वह दुखी हुआ। परमात्मा तो समष्टिगत व्यवस्था करता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दिया जाए, ये पृथ्वी सभी के लिए परमात्मा ने बनाई है। अब यह समष्टिगत व्यवस्था है कि नहीं? परमात्मा ने धरती बनाई है, तो आप बता सकते हो किन किन लोगों के लिए बनाई है? हैं? सभी प्राणियों के लिए, यहां तक कि केवल मनुष्य के लिए भी नहीं है, हर प्राणियों के लिए, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, यानी हाथी से लेकर चींटी पर्यंत, सभी प्राणी के लिए यह धरती उसने बनाई है। और उस धरती में रहने का सभी को समान अधिकार है, रह भी पाते हैं, रह भी रहे हैं। अब कठिनाई कहां आती है? सभी के लिए समान रूप में बनाई हुई इस धरती को कोई एक व्यक्ति कहता है कि ये मेरे लिए बनाई है, अतः इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, तब वहां से समस्या खड़ी हो जाती है। इसी तरह पानी परमात्मा ने सभी के लिए बनाया है, जल सभी के लिए है। किस किस के लिए है ये जल? सभी के लिए है, हाथी से लेकर चींटी पर्यंत सभी के लिए है। इसी तरह तेज, सूर्य, ये सब सभी के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, ना किसी एक व्यक्ति के लिए, ना किसी एक समाज के लिए, ना किसी एक वर्ग के लिए है, ना किसी एक लिंग के लिए है, ना किसी एक जाति के लिए है, ना किसी एक धर्मावलंबियों के लिए है। ये तो समष्टि सृष्टि है परमात्मा की। अब समस्या यह है कि वो सब मेरे लिए है, जहां ये बात आ जाती है तब फिर समस्या खड़ी हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाता है। इसी तरह आकाश सबके लिए है, पंचमहाभूत सभी के लिए, पंच तन्मात्रा सभी के लिए, सूक्ष्म शरीर सभी के लिए, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, अंतकरण चतुष्टय, पंच प्राण, ये सभी के लिए समष्टि रूप में, समान रूप में परमात्मा ने ये व्यवस्था की है, संचार किया है, सृष्टि की है। तब गड़बड़ कहां हो जाता है कि ये अपने के लिए जाए, मेरा, इसका भोक्ता मैं हूं, मेरे लिए बनाया है, मैं इसका भोक्ता बनूं, तो किसी एक वर्ग उसका कब्जा करता है, दूसरा वर्ग झगड़ा करता है, किसी एक व्यक्ति इस पर कब्जा जमाने लगता है तो दूसरा व्यक्ति झगड़ा करने लग जाता है, किसी एक धर्मी इस पर कब्जा अधिकार करने लगता है, दूसरा धर्मी झगड़ा करता है, और एक के इस पर अधिकार जमाना दूसरे के लिए समस्या बन जाता है।
पचास वर्ष पहले, सौ वर्ष पहले, अनुमान से हम कह रहे हैं सौ वर्ष पहले, मान लो कि यहां सब जंगल ही जंगल था, है ना? शायद मुझे लगता है यहां सब जंगल ही जंगल था, और आज सब घर ही घर बन गए। आप विचार करो कि जिस समय यहां जंगल ही जंगल था, उस जंगलों से आपको तो कोई समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि आप थे नहीं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं थी उस जंगल से। लेकिन उस समय के जो जंगल में, वहां जंगल में रहने वाले बंदर होंगे और जानवर होंगे, मृग होंगे, हिरण होंगे, उनके लिए बड़ा आनंद था। और धीरे धीरे जब मनुष्यों का प्रवेश हो गया, उसने कहा कि ये मेरे लिए, हमारे लिए आवश्यक है, इसको हम अपने ही उपभोग्य बनाना चाहिए करके, जब उस मनुष्य समाज ने उसको अपने अधिकार में लेकर अपने उपभोग्य बनाने लग गए, तो समस्या किसको हुई? उन जानवरों को समस्या हुई कि नहीं, बोलो? उस मृगों को समस्या हुई कि नहीं? विस्थापित होना पड़ा कि नहीं? उन बंदरों को विस्थापित होना पड़ा, उन हिरण मृगों को विस्थापित होना पड़ा, परिणाम हुआ कि उनका वंशनाश हो गया है? या कहीं और जाकर बैठे हो तो बैठे, वहां वंग विस्तार हुआ हो तो हुआ हो, यहां मनुष्य समाज का विस्तार हुआ तो उस मृग हिरणों का समाज का विस्तार फिर आगे कनेरी गुफा की तरफ हुआ हो, क्या पता? ये तो ठीक था, लेकिन जब मनुष्य ने ये कहा, यहां रहते थे, यहां से उनको विस्थापित किया, वहां सुरक्षित रहने लगे थे, उनको फिर अपना भोग्य बनाकर मारने शुरू कर दिया, तो क्या होता है? एक के उपयोग में आने पर दूसरे के लिए समस्या हो जाती है, यह स्वाभाविक ही है। क्योंकि जब परमात्मा की व्यवस्था में कोई रहना चाहता है तो कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि मनुष्य प्राय, आज का मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था में रहना नहीं चाहता। पहले के मनुष्य परमात्मा की व्यवस्था में रहते थे, वो जैसी व्यवस्था कर दे उसी व्यवस्था में वह राजी होते थे, इसलिए समाज में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं आती थी। और आज का मनुष्य उसकी व्यवस्था में रहना नहीं चाहता है, अपनी व्यवस्था से रहना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था तो ऐसी व्यवस्था, परिच्छिन्न व्यवस्था है, व्यक्ति सापेक्ष व्यवस्था है, परिच्छिन्न व्यवस्था है, तो जिसके चलते अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि उस व्यवस्था को केवल तुम नहीं चाहते हो, दूसरा भी चाहता है, वो भी चाहता है, वो भी चाहता है, सभी अपनी व्यवस्था से रहना चाहते हैं, और सभी जो जिस व्यवस्था अपने करके रहना चाहते हैं वो व्यवस्था पूरी नहीं होती, फिर वो रोना रोते हैं, हम ये चाहते थे ये नहीं हुआ महाराज, हम ये चाहते थे ये नहीं हुआ महाराज, ये कैसे होगा महाराज, ये चाहते हैं ये कैसे होगा, ये नहीं चाहते थे ये ऐसा हो गया। अरे भाई, तुम नहीं चाहते थे, वो दूसरा चाहता था, तुम्हारा होगा या उसका होगा, दोनों का तो होगा नहीं।